तो हम सबको बाबा ने जो पूछ दी है, देह अभिमान वाली पूछ को आग लगा दी, नहीं रखना। बहुत निरहंकारी, बहुत नम्रचित, बहुत निर्माण चित, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, कितनी भी बड़ी सेवाएं मिल जाएं, सबसे बड़ा अटैक उसी समय होता है जब कोई को कोई सीट मिलती है, उस सीट के बाद उसकी बोल चाल चलन भाषा, उसका रुहाब रूप दिखाई देने लगता है, उसके अंदर से झलकने लगता है, इसको थोड़ा सा अपनी सीट का नशा है, अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में। और जिसके अंदर सूक्ष्म में भी अभिमान का अंश भी होगा, उसकी बहुत गहरी एक परख होगी, निशानी होगी, कहीं न कहीं या अपमान फील करेगा या किसी न किसी का अपमान कर देगा। अगर किसी हद की पोस्ट पोजीशन का, मान लो आज कोई को सेवा की कोई चार्ज मिल गई, हमारी दादी गुलजार दादी कभी कभी हंसी में क्लास कराती थी मधुबन निवासियों का, कहती थी ये टेबल साफ करने वाले भी इंचार्ज हैं, इनसे भी संभल के काम लेना पड़ता है, इनको भी बहुत रिस्पेक्ट दे करके काम लेना है, नहीं तो ये भी छोड़ देंगे, गंदा ही पड़ा रहेगा टेबल, ये भी इंचार्ज हैं। कोई एक छोटी सी ड्यूटी मिल गई तो कईयों को उसको इंचार्ज पने का भी नशा आ जाता है कि मैं इसका इंचार्ज हूँ, सफाई करने वाला भी समझता है, सफाई कराने वाला भी समझता है मैं इंचार्ज हूँ, वो भी एक दूसरे से प्यार से रिस्पेक्ट से बात करे, उसके लिए भी उसको मनाना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। और बाबा हम सबको सिखा रहा है, खुद ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी को देखा, कभी अभिमान के रिंचक भी अंश भी उनको टच नहीं कर पाया, इतनी निर्माण चित नम्र चित आत्मा। आप सबको शायद अनुभव मैंने सुनाया हो, सुना हो आपने, मैं शुरू शुरू में बहुत छोटा आया और स्कूल की लाइफ से आया था, दसवीं क्लास पढ़ करके मधुबन में आया और मुझे सेवा मिली बाबा के साथ बैठ करके लिखने की, पहले यशोदादी लिखती थी और फिर मैं बाबा के साथ बैठता था पूरी नाइट, दादी अकेले कब तक लिखेगी, तो मैं पूरी नाइट बाबा जितना बोलते थे सब लिखता था। उस समय कंप्यूटर या हमारे पास टेप रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था, तो पूरी रात बाबा बोलते थे और मैं सारी रात बैठ करके लिखता, पूरी डायरी भर लेता कॉपी। तो दूसरे दिन दीदी और दादी दोनों हेड थी, मुख्य थी, वो कहती थी तुम चलो क्लास में आ सुनाओ, नाइट क्लास में। और नाइट क्लास में उस क्लास के बीच में एक भी सोफा तो था नहीं, छोटे हाल में कुर्सी भी नहीं थी, गद्दी भी नहीं थी, ऐसी सीट पर गद्दी पर मुझे बिठा दे और खुद सामने बैठे, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी हस्ती मेरा हाल क्या होता होगा। दीदी और दादी जो हेड्स हैं, जिनको हम पहले पहचाना भी नहीं, और सब जानते हैं दादी है हमारी, ये दीदी है हमारी, जिनके आगे कोई बात भी नहीं कर सकता, उनके आगे मैं टीचर बन करके उनको सुनाऊं, कितना एकदम कपकपी आ जाए। इनके थे नहीं नहीं तुम लिखा है ना सारा सुनाओ, कितना लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो जो भी रात भर मैं जब बाबा के पास बैठ के लिखता था, दीदी दादी और पूरा क्लास मधुबन का सामने बैठा होता था नीचे वो भी, और मैं सामने गद्दी पर बैठ करके सुनाता था। कितनी निरहंकारी आत्मा होगी आप समझ सकते हो, आज कोई को गुरु की गद्दी मिल जाए उसको कितना अहंकार आ जाता है, उसकी चलन में क्या दिखाई देता है, उसके आगे कोई चेला ऐसे बैठ सकता है। हमारी दादियों को कभी गुरु की गद्दी का अभिमान आया ही नहीं, बाबा ने मुझे कोई गुरु की गद्दी दी है, कभी किसी भी दादी के चेहरे पर ये चिन्ह नहीं दिखाई देंगे, इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकारिता। मैं समझता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं हो जब दादी थी मैं दादी के साथ सोफे पर सामने साथ न बैठा हूँ, क्योंकि सब बातें एक दूसरे को पूछना सुनाना लिखाना पढ़ाना कि ये हुआ ऐसा हुआ ये लिखो ये लिखो, तो दादी के साथ भी ऐसा ही था, अभी जानकी दादी के साथ भी ऐसा ही है। कल मैंने दादी को ऐसे ही फ़ोन किया, लंदन में थी, कहती मधुबन में क्या चल रहा है। मैंने कहा दादी हमारे पास तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, बड़े वीआईपी आए हैं, 70-80 साइंटिस्ट आए हैं एग्रीकल्चर के, कहते तुमने मेरे को उनसे बात क्यों नहीं कराई, मेरे को क्लास कराना है। 2 बजे थे दिन के मैं यहाँ पर, तो मैंने कहा दादी शाम को आपका क्लास करा देते हैं। हाँ हाँ मैं ज़रूर तैयार बैठी हूँ, और जब तुम्हारे मेहमान आए सभा के बीच में तो मैं क्लास कराऊँगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इतनी 97 एज है, इतना उमंग है सेवा का, इतनी निरहंकारी रूप से सामने से ऑफर कर रही हैं, मैं क्लास कराऊँगी आके। तो मैंने अपने क्लास में वहाँ कॉन्फ्रेंस में सुनाया कि आज आपको दादी जानकी जी मिलने के लिए आ रही हैं। तो सोचने लगे दादी जानकी कहाँ हैं, तो मैं लंदन से मिलेंगी। और 6 बजा वहाँ के, 2 बजे थे, 1:45 दिन के वहाँ के बजे थे, और हमारे पास 6 बजा था, और शुरू हो गई लाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दादी ने बहुत अच्छा एक योगिक खेती किसको कहेंगे उस पर वहाँ से क्लास कराया, 20-25 मिनट अच्छी तरह से, और इतना अच्छा वातावरण बन गया, तो दादी एकदम सबसे जैसे मिल रही है सामने। तो हम आज दादियों की सेवा को देख रहे हैं, उनकी निरहंकारिता को देख रहे हैं, उनके अथकपन को देख रहे हैं, क्या हम सबको सिखा रही हैं, क्या कह रही हैं। हम थक सकते हैं लेकिन वो लोग थकते नहीं हैं, एक सेकेंड भी कभी भी कहेंगी तुम कभी नहीं कहना दादी बिजी है, मुझे ये शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। जब सेवा है, जब कोई काम है, तुम डायरेक्ट आ जाओ, किसी से भी मिलाना हो मेरे पास ले आओ। तो ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी कहाँ से मिल रही है। इतनी शुभ भावनाएं हैं, इतनी बेहद की भावनाएं हैं, कभी भी किसी हद में फंसी हुई नहीं है आत्माएं। कामना जीत है, कोई की महिमा नहीं चाहिए, कोई सम्मान दे या न दे, अपने ऊंचे सम्मान में रहती हैं। और बाबा ने कितना सम्मान दिया है, उनकी वाणी से दिखाई देता है कि रग रग में वो बाबा का मान, बाबा ने जो दिया है उनके दिल से निकलता है, बाबा ने मुझे क्या दिया है, बाबा ने मुझे क्या बनाया है। तो हम सभी भी अपनी दादियों को, अपने वरिष्ठों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जगदीश भाई ने अपनी यादगारें छोड़ी, त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, सेवाओं में अथक, और लास्ट में जब शरीर छोड़ने का समय आया, उनको पता था कि अभी मैं बचूंगा नहीं, रहूंगा नहीं, तो बाबा के सामने आए और बाबा को बोलने लगे बाबा मेरी एक आस रह गई। बहुत दिल से एकदम आंसू भरे हुए थे, बाबा को बोला बाबा मेरी एक आस रह गई। कौन सी आस रह गई? मैं आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, बस मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक आस मेरी अंतिम रह गई है, और मैं अभी क्या करूं। बाबा ने कहा बच्चे आस पूरी हो जाएगी। तो ऐसी आत्माएं भी एडवांस पार्टी में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जरूर निमित्त बनेंगी, इस आस को लेकर के गई हैं। और हम सभी भी उनके कदमों पर चलने वाले, उनको फॉलो करने वाले, बाबा कहता है बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन इन महान आत्माओं ने जिस प्रकार से त्याग, तपस्या, एकदम अटूट निश्चय, एकदम भावनात्मक बुद्धि और यज्ञ में संपूर्ण समर्पण, कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं किया, कुछ नहीं चाहिए, ऐसी आत्माएं त्याग की, तपस्या की, सेवा की जो प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने यादगार कायम की है। और बाबा कहता है, वैसे तो कहता है केवल बाबा को फॉलो करो, सी फादर फॉलो फादर। अगर बहन भाइयों को देखते रहोगे तो हो सकता है उनकी कोई कमियां भी आपको दिखाई दें, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ न कुछ तो हो सकता है, इसलिए उनको न देखो। विशेष आत्मा बनना है तो हर एक की विशेषताओं पर ही नजर जाए, किसी भी कमी, कईयों को कमियां देखने की आदत बन जाती है, नजर ही उसके ऊपर जाती है, और कमियां देखने की आदत बन जाएगी तो बाबा कहता है तुम कमियों के, अवगुणों के खान बन जाओगे। इसलिए अगर कोई में है भी, बाबा ने जैसे हमारी कमियों को नहीं देखी, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बाप बच्चों की एक विशेषता देख करके उनको विशेष आत्मा बना देता है। अगर 36 में से 35 भी अवगुण हैं, लेकिन एक भी कोई तो गुण होगा, एक तो कोई कला विशेषता है उसके अंदर जो भगवान को पहचाना है, भगवान का वो बेटा बना है, बच्चा बना है, और उसके दिल से बाबा शब्द निकलता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। बाबा उस बच्चे की उसी विशेषता को कार्य में लगा देता है, और अगर उस विशेषता को उसने स्वीकार करके कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, यज्ञ में लगा दिया, तो वो एक विशेषता सब विशेषताओं को ले आती है और उसकी सारी कमियां समाप्त हो जाती है। एक बहुत सुंदर विधि है ये। इसलिए कभी भी कमजोरियों का चिंतन करके अपने आप को दिल शिकस्त नहीं बनाना। कल बाबा के वरदान में था, कई बच्चे अपनी कमजोरियों को सोचते सोचते एकदम निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, और बाबा कहता है बच्चे कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखो अवगुणों पर, ध्यान रखो कोई भी कमियां हमारी प्रकट ऐसे ना हो जाएं जो हमसे पाप कर्म कराती रहें, विकर्म हो जाएं, लेकिन उनका चिंतन करके अधिक सोच सोच करके दुखी मत हो जाओ। सेवाओं में अपने आप को बिजी कर दो, पुण्य कर्मों की कमाई में अपने आप को बिजी कर दो, ये पाप के खाते छोटी मोटी कमी कमजोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए चिंतन करके अपनी कमजोरियों का या दूसरों की कमजोरियों को देख करके अपने आप को निराश हताश नहीं करो। ऐसा भी है, इतना पुराना है, इसमें भी अभी तक ये है ये है, बाबा ने कहा है, किसने आपको ड्यूटी दी है, देखो ठेका नहीं है तुमको मिला हुआ। इसलिए हर आत्मा की विशेषता को देख करके उसकी विशेषताओं को सेवा में यूज कर लेना, जैसे बाबा यूज कर रहा है, दादियां हमारी यूज कर रही हैं, इतनी सारी कारोबार जो चल रही है, बाबा ने दादियों ने केवल हमारी विशेषताओं पर नज़र रखी है और आज इतना बड़ा कार्य। हमारे मेहमान जो आए हैं, कल एक बहुत बड़े शुगर मिल के चेयरमैन थे, मिल रहे थे, बहुत इस बारी अच्छे अच्छे VIPs आए, वाइस चांसलर्स भी आए, कई शुगर मिल के डायरेक्टर, MD और करीब 70-80 हर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डायरेक्टर्स। तो जब वो मिल रहे थे मेरे से, कहते भाई जी एक बात समझ में नहीं आई मुझे, हम लोग छोटा सा कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम ऑफिस में ही काम करते हैं, कोई बॉस है वो कैसे आर्डर से काम कराता है, कोई करता है कोई नहीं करता, गुस्सा करता है, टेंशन होता है उसके चेहरे पर, और यहाँ पर इतने सब देख रहा हूँ मैं, कोई के चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई मैं जवाबदार भी हूँ, और सब काम ऑटोमेटिक चल रहा है, सब मुस्करा रहे हैं, आखिर ये कैसे हो रहा है सब। तो मैंने कहा जो इसका डायरेक्टर है ना, वो दिखाई नहीं देता है, वो ना आपको दिखाई देता है ना मेरे को दिखाई देता, उसको अगर तुमने पहचान लिया ना, उसको पहचानने के लिए आपको इस भूमि पर बुलाया गया है। जो इतने सबको चला रहा है, वो चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कितना गुप्त है, लेकिन कोई तो है, तो कहते हैं है तो कोई शक्ति ही, कोई शक्ति चला रही, लेकिन परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, भगवान विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहा है। तो हमारे पास एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के सेक्रेटरी भी थे, तो उन्होंने कहा भाई जी बहुत बड़ी सेवाएं आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप अभी तक बैटरी हो लेकिन कनेक्शन नहीं दे पाए हो, कनेक्शन दे दो सारा विश्व बदल जाएगा, चार्ज हो आप लोग, इतना बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। हमने कहा आपको इसीलिए बुलाया कि अभी आप कनेक्शन जुड़वा लो, कनेक्शन जोड़ने के लिए ऐसी आत्माएं निमित्त बन रही हैं जो पूरे विश्व के अंदर एक जय जयकार हो जाए। बाबा ऐसे लिए तो इनको सेलेक्ट करके ला रहा है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बाबा कहता है जब ऐसी माइक क्वालिटी की आत्माएं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं आएंगी,